नंबर एक, अगर उसमें खाली एक ही गलती हो रही हो कि मिट गए रही, बाकी अगर कोई गलती नहीं हो रही, जैसे बात कहना साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा, ये अलग चीज हो गई। बाद जगह पे बाकायदा वहां पे डांस भी हो रहा होता है, वो अलग चीज हो। बाद औकात ऑर्केस्ट्रा बिठा के लाइव म्यूजिक शो भी हो रहा होता है, सब ये अलग चीजें हो गई। अलग से सवाल करना हो, मिस गैदरिंग का मतलब ये कि और उसमें कोई खिलाफ इस्लाम बात नहीं, सिर्फ यह है कि लेडीज और जेंट्स के बीच में पार्टीशन नहीं रखा है। तो इस सूरत में अरेंज करना इसको, वो तो फिर भी हराम रह सकता। अटेंड करना जायज है, बशर्त किए कि औरत खुद अपने पूरे हिजाब में। और ये इन्होंने जो सवाल किया है, इनका सवाल जो बता रहा है कि इनको मसला मालूम है, सिर्फ ये कंफर्म कराना क्या है। औरत अपने पूरे हिजाब में, फुल हिजाब का मतलब खाली सर पे स्कार्फ पहनना नहीं, फुल हिजाब का मतलब यह है कि अगर उसने अपना फेस खुला रखा तो फेस पर किसी किस्म का मेकअप नहीं होना चाहिए। जीनत, इस्लाम में औरत के लिए जीनत जायज है, मगर जीनत को छुपाना वाजिब ना मैडम। नॉर्मली शादी के मौके पर खाली स्कार्फ पहन लेने को अगर हिजाब समझे और बाकी चेहरे के ऊपर या हाथ पैर या नेल पॉलिश या मेहंदी वगैरह बस खुली खुली जीनत हो, वो हिजाब नहीं माना जाएगा। ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि शादी में नॉर्मली हमने ये नहीं, औरतों को इस तरह नहीं देखा है कि जैसे मतलब वो कर्बला या रजब में ज्यारत पे नजर आती है, चेहरा खुला हुआ है, या हज में या उमरे में मक्के मदीने चेहरा खुला हुआ है, लेकिन बाकी बिल्कुल सिंपल, लिबास भी सिंपल और बाकी सारा बाल वगैरह छूट रहा। शादी में उमूमन कुछ ना कुछ जीनत होती है। अच्छा, जीनत जिसके अंदर मेकअप भी आ गए, जिसके अंदर ज्वेलरी भी आ गई, जिसमें कपड़े भी आ गए, इसको अब हम इस तरह से स्टार्ट करें कि इस्लाम में हिजाब किसे कहते हैं। हिजाब का मतलब यह है कि सर से लेकर पैर के नाखून तक, पैर इंक्लूड है। औरत को अपनी सारी बॉडी नामहरम से छुपाना है, सिवाय फेस के, सामने के हिस्से के और ये दोनों हथेलियां दोनों तरफ, बाकी पूरा जिस्म छुपाना। मगर इसके बाद इसमें चार कंडीशन और। नंबर एक, जिस चीज से बॉडी को कवर किया जाए, ये शोल्डर टू नी बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। हां, कंधे के ऊपर बिल्कुल स्कार्फ जो है बहुत टाइट है, वो होता ही है सर, या जो स्टॉकिंग वगैरह पैरों में होती है घुटने के नीचे वो भी ठीक, लेकिन शोल्डर से लेके घुटने तक, फ्रॉम शोल्डर टू नी जो ड्रेस है वो बहुत ही ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। नंबर दो, हिजाब का मतलब है कवर, तो इतना पतला और बारीक नहीं होना चाहिए, सी थ्रू टाइप का नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि उसको पहना हुआ है और फिर भी अंदर से खाल या पार्ट ऑफ द बॉडी नजर आ रहा है। इसका बहुत ही अगर पतला है लेकिन बाल नजर आ रहे हैं, जो स्टॉकिंग पैरों में पहनी जाती है ऐसी है कि अंदर से स्किन नजर आ रही है, ये सेकंड कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन बहुत टाइट ना हो, लेकिन टाइट का इस्तेमाल होता है शोल्डर से लेके नी तक। नंबर दो, बहुत बारीक ना हो। बारीक का मतलब सर के बाल से लेके पैर तक होता है मतलब। नंबर थ्री, खुद वो चीज जिसके जरिए से हम हिजाब कर रहे हैं वो खुद बहुत अट्रैक्टिव और अपीलिंग ना हो। यह तीसरा लम्ब ऐसा है जिसका ताल्लुक हर जगह के अपने एनवायरमेंट से। अब अगर कलर, बहुत सारे कलर ऐसे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान बहुत ही अट्रैक्टिव माने जाएंगे, यहां पर बहुत ही कॉमन यूज होते हैं, तो इसका फैसला मुस्तहिद नहीं करेगा जिस इलाके में आप हैं। खुलासा ये कि हर वो कलर और हर वो डिजाइन रेट का जिसकी वजह से मर्दों की निगाहें खुद ब खुद उठने लगी, उसकी तवज्जो उस तरफ होने लगी, अटेंशन को डाइवर्ट करने लगे, वो चीज नहीं होना चाहिए। और नंबर चार, ये जो सवाल में आ गया कि जो बॉडी के पार्ट खुले हैं उसके ऊपर कोई जीनत नहीं होनी चाहिए, फेस और हाथ खोलने की इजाजत दी है चुनाचे नेल पॉलिश मेहंदी किसी किस्म के मेकअप इंक्लूडिंग कलर कॉन्टेक्ट लेंस, क्योंकि आंख खुली होती है चेहरे का हिस्सा, चेहरा खोल सकते हैं, कान भी खोल सकते हैं, लेकिन अगर कलर कॉन्टेक्ट लेंस है, वो वाले कलर जो आदमी को की तवज्जो अपनी जानी चाहिए वो भी नहीं होना चाहिए, वरना वो हराम नहीं, वरना आंसू बहाना पड़ेगी। तो चार कंडीशन है तब ये कहा जाएगा इस औरत ने हिजाब किया। तो अब सवाल इनका बना, मिड गैदरिंग में हम हिजाब करके चले जाए तो जायज? अगर आपका हिजाब ये चार कंडीशन पे पूरा होता रहा, टाइट नहीं है, बहुत बारीक नहीं है, बहुत ही अट्रैक्टिव और अपीलिंग नहीं है, और जीनत वाला नहीं है, तो फिर इसकी वर्जिश है। सवाल नंबर दो, ये सवाल मेरे लिए थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन शायद आम लोग ऐसा ही समझते हैं। फरमाते हैं कि माय डॉटर इज रिसीविंग अ मेडिकली नेसेसरी इंजेक्शन एवरी मंथ, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दैट टेकन एवरी 28 टू 30 डेज अपार्ट, देयर इज वन कमिंग इन द मिडिल ऑफ द रमजान, इट इज ऑल मेडिकेशन, नथिंग दैट वुड गिव यू एनी नरिशमेंट और स्ट्रेंथ, इज इट अलाउड? ये जो सवाल है, इस सवाल से ये इंप्रेशन मेरे जहन में आ रहा है कि ये मोमिन या मोमिना ये समझ रही कि रोजे में इंजेक्शन लगाना हराम है या उससे रोजा टूट जाता, ऐसा नहीं। रोजे के अंदर इंजेक्शन लगाने की बिल्कुल इजाजत, इन्होंने बार बार लिखा कि मेडिकली इंपॉर्टेंट, नहीं मेडिकली इंपॉर्टेंट भी ना, जरूरत ना हो उसको अवॉइड किया जा सके, तब भी इंजेक्शन जो है जिसमें कोई चीज इंजेक्ट हो रही बॉडी के दीगर पार्ट से हलक के जरिए थ्रोट के जरिए चीज नहीं जा रही, वो रोजे को इनवैलिड नहीं करती, चाहे उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी मौजूद हो। जैसे बाद दवाइयों के बारे में कहा है कि वो दिन के वक्त हराम है, लेकिन अगर रात को आप यूज कर सकते हैं तो रात को यूज करें, दिन को ना करें, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक इंजेक्शन सब मराजे कहते हैं कि हराम, वो भी स्ट्रेंथ वाला नहीं, नॉरिशमेंट वाला नहीं, सिर्फ वो कि जिसके अंदर बाकायदा जो फूड है वो इंजेक्शन में लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन के जरिए फूड आपके स्टमक में पहुंचाएंगे, आप खाना ही खा रहे हैं, अपने स्टमक को खाने से भर रहे हैं, लेकिन बजाय थ्रोट के वो आप इंजेक्शन के थ्रू रिजा दे रहे हैं, वो भी सब मराजे ये कहते हैं। लेकिन जो फेमस मराजे हैं आगा खामेनाई, आगा सिस्तानी और मरहूम में आगा हुई, ये तीनों कहते हैं कि इस वाले इंजेक्शन में भी कोई हरज नहीं है, लेकिन इट्स बेटर टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ इंजेक्शन जिसमें सिर्फ फूड, नॉट एनी मेडिसिन। लेकिन जो इन्होंने सवाल किया वो उसके इतना से ये बिल्कुल सही है, रोजे के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रोजा बिल्कुल ठीक, आपकी बेटी का रोजा बिल्कुल ठीक रहे। दो और सवाल, एक सवाल पूछा गया है, एक और वो कहीं और था, मैंने देखा था तो इसके साथ ही जवाब दे दूं। इसी तरह सम पेशेंट ऑफ अस्थमा, उनको एक स्प्रे लेना होता पफिंग टाइप का, वो स्प्रे रोजे के दरमियान भी लेना पड़ता, पफ करना होता है, थ्रोट से वो लंग को कोई फायदा पहुंच जाता, क्योंकि रोजे के दरमियान कोई खाने पीने की चीज या उबाल गलीर हलक से नीचे उतरना जायज नहीं, लेकिन जो चीज लंग में जा रही है या सांस की नाली में जा रही है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रोजे के आलम वो जो स्टमक के पेशेंट के प्रेजेंट का स्प्रे पफिंग वाला इस्तेमाल करते हैं, इट इज ऑल्सो अलाउड एंड ओके। और इसी में एक बात और आ जाती है कि हर वो चीज जो आपने खाली मुंह में रखी वो आपके हलक थ्रोट में नहीं गए, खाली मुंह के अंदर रही सवाल कर और वहीं अब एब्जॉर्ब हो गए, वो भी रोजे के आलम में जाएगी। जैसे आगाए सिस्तानी और आगाए खुमैनी और आगाए कोई तीनों की बुक में लिखा कि अगर ड्यूरिंग रोजा औरत या मर्द खाना पका रहा है और टेस्ट करना चाह रहा है इसका नमक मिर्च जो है वो उसका वो कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, थ्रोट से लेके नहीं रहा, थोड़ा सा उसके लेके जबान पे रख के खाली टेस्ट करना ऑल्सो अलाउ। बच्चे को खाना खिलाने के लिए यहां तो कभी कोई नहीं ऐसा करेगा, कुछ हाइजेनिक चीजों का यहां कुछ ज्यादा लोगों को ओवर कॉशियस है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो जरा नर्म करने के लिए रोटी लेके मुंह में दवाई बहुत नर्म हो गए फिर बच्चे को दे, तो बच्चे का तो खैर रोजा नहीं है लेकिन हमारा रोजा भी ठीक रहेगा। लेकिन ये वाली का एग्जाम्पल पेज नहीं आती। इसके जरिए मैं कहां ले जा रहा हूं, मेडिकल की बात आई तो मेडिकल का तीसरा और आखिरी मतलब, एंजाइना के कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं और कुछ हार्ट अटैक के अंदर भी जो प्री अटैक के सिस्टम का प्रिकॉशन लिया जाता है तो टैबलेट होती है जो जबान के नीचे रखी जाती है, हलक से नीचे नहीं जाती है, वो जबान के नीचे रखते हैं, गर्व होके वो टैबलेट जो है वो बॉडी में पहुंचती है, रोजे के आलम में उसकी भी इजाजत है। क्योंकि इसलिए नहीं कि ये जरूरी है या लाइफ थ्रेटनिंग मसल है, नहीं, नॉर्मल हालत में भी जाए क्यों, रोजे का मसला स्टार्ट होता है थ्रोट से, बिफोर थ्रोट मुंह की कैविटी में जो चीज रहेगी वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, चाहे वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर ही जाए, लेकिन थ्रोट के रास्ते से नहीं जा रही वो ऑल राइट और ओके। तो इंजेक्शन इज ऑल राइट, अब तमाम पेशेंट का ऑपरेटिंग स्प्रे इज ऑल राइट, एंजाइना पेशेंट जब खास टैबलेट अपनी जबान के नीचे रखते हैं अटैक को रोकने के लिए वो भी ऑल राइट। देखिए अब सवाल ऐसे होते हैं कि एक सवाल सुनेंगे आपके जहन में पांच सवाल और हैं, और सही मानों में क्वेश्चन आंसर सेशन का बेनिफिट होता जब फ्लोर भी बराबर में इन्वॉल्व हो, लेकिन लाल थर्सडे को हम ट्राई कर सकते हैं आज नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी सवाल बहुत आ चुके हैं। अब यहां पर सवाल ये आया है कि जो सवाल जिन्होंने पूछा उन्हें कोई एतराज नहीं है, वो सिर्फ मालूम के लिए एक चीज पूछना चाहते हैं, उनका सवाल ये है। अच्छा उससे पहले बहुत ही छोटा सा सवाल है, दवाइयों में जेलेटिन हो तो क्या हुक्म है? तो इसका जवाब यहां से शुरू होगा कि जेलेटिन का एक ही हुक्म, चाहे वो दवाई की जेलेटिन हो, चाहे वो चिंगम में हो, चाहे वो चॉकलेट में हो, चाहे वो दूसरे फूड आइटम में हो, जेलेटिन अगर जायज है तो सब जगह जायज, और जेलेटिन अगर हराम है तो सब जगह हराम। वो वाली दवाइयों के बाद जरूरी है, दूसरी है कि जहां पे आदमी की जिंदगी रिस्क में हो तो शराब भी पीना जायज हो जाता है वो नहीं, लेकिन बाकी नॉर्मल हालात के अंदर जेलेटिन अगर दवाई में हो तो वही उसका मसला है जो आम जेलेटिन का मसला है। अल्कोहल अगर हराम है तो चाहे दवाई में हो तब भी हराम है, और चाहे किसी और खाने पीने की चीज में तब भी हराम, और अल्कोहल अगर हलाल है तो दवाई में अगर हलाल है तो बाकी चीजों में भी हलाल है। तो अगर अल्कोहल को मैं अभी नहीं खेलता हूं तो जेलेटिन, जेलेटिन का एक ही मसला, यही मसला दवाओं वाली जेलेटिन हो, यही मसला कॉन्फेक्शनरी और चॉकलेट और बिस्किट और ब्रेड और चिंगम और खाने पीने की चीजों, और वो मसला क्या है? मसला यह है कि जेलेटिन हलाल है। अब ये बहुत मुख्तसर मैंने बात कर दी, लेकिन जरा सा जो डिटेल में लोग समझ सके तो ज्यादा अच्छा है। नजाफत तहारत में इस्लाम के पास एक फार्मूला और रूल है, बेनिफिट ऑफ डाउट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी आपके सामने एक चीज आती 50% चांस है ये पास है, 50% चांस है कि नहीं, यानी आप डाउट में, तो बेनिफिट ऑफ डाउट है कि आप उसको पास समझे, इवन दो इफ यू कैन आस्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर या यू कैन रीच द इंग्रेडिएंट, आप पढ़ भी सकते हैं, आप जो डायरेक्ट फैक्ट्री है उसको मालूम नहीं कर सकते, तब भी शरण इज नॉट नेसेसरी, इंक्वायरी नजाफत तहारत के अंदर इस्लाम में जरूरी नहीं। जेलेटिन जो है अकॉर्डिंग टू हमारी प्रकाश तीन किस्म की होती है, तो अगर किसी प्रोडक्ट आपको 100% कंफर्म है कि ये थर्ड टाइप की जेलेटिन है तो वो हराम, लेकिन अगर इतना आपको मालूम है कि जेलेटिन पता नहीं है टाइप वन है, पता नहीं टाइप टू है, पता नहीं टाइप थ्री, देन इट्स ओके फॉर यू टू यूज इट, इवन दो यू कैन आस्क और यू कैन रीड द इंग्रीडियंट लिस्ट, जो उस पर प्रिंट है वो भी पढ़ना आप पर वाजिब है। तो इंटरनेट वगैरह के थ्रू इंक्वायरी करते फिरना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये आपको वजीफा चली नहीं, ये इस्लाम ने आपकी ड्यूटी नहीं लगाई। अब तीन टाइप की जेलेटिन क्या, एक तो प्लांट जेलेटिन है जो फार ईस्ट में बहुत ही पॉपुलर, खासतौर पर चीन में बहुत ज्यादा ये राइज है, जेलेटिन बनाते हैं वो लोग मुख्तलिफ पौधों से, सब्जियों से या प्लांट से, तो प्लांट में तो तकरीबन तमाम प्लांट जो है वो पास है, उससे जो जेलेटिन डेराइव की जाएगी या बनाई जाएगी वो भी पास। नंबर दो, जेलेटिन बनाई जाती है हलाल जानवर की बूंद, हलाल जानवर मीन जबा किया गया है गलत तरीके से, जानवर जो है वो इट्स हलाल, कुत्ता और सुअर छोड़ के हर जानवर जो है उसका उसका ये मतलब है कि किसी भी जानवर की बोन की जेलेटिन है, बोन जेलेटिन इज ओके। एक बात बता दू, आगा सिस्तानी फरमाते एहतियात वाजिब यह है कि बोन से भी अवॉइड करें, मगर एहतियात वाजिब मीन्स उसके बाद के मर्जे की बात मान। और क्योंकि आगा सिस्तानी के बाद जितने मर्जे सब कहते हैं कि बोन जेलेटिन जो है ओके, और आगा सिस्तानी से पहले के भी सारे मर्जे यही कहते हैं, जैसे आगा खुरी और आगा गुरपायकानी और आगा ये जो आगा खुरी और आगा खुमैनी से आज तक का टाइम पीरियड है इसमें सिर्फ कोंडी एक आगा सिस्तानी गुजरे, उन्होंने भी फतवा नहीं देता एहतियात वाजिब। एहतियात वाजिब मीन आपको एक ऑप्शन दे दिया दूसरे मर्जे की बात मान। तो कहे इन शॉर्ट बीफ जेनेटिन इज ऑल्सो ओके, और तीसरा बना जानवर के गोश्त या चर्बी वगैरह से अगर कोई जेनेटिन बनाई जाए तो वो आराम है, अनलेस ये कि जानवर स्लॉटर अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल, वो मुसलमान मुल्कों में हो। अब यहां पे अगर आपके सामने किसी चीज के इंग्रेडिएंट पे लिखा है जेनेटिन, पता नहीं टाइप वन है टाइप टू है या टाइप थ्री, और इन जनरल एक बात बता दू, ज्यादातर दुनिया में बोन जेनेटिन ही इस्तेमाल होती है। सही मारा वो एक तरफ, आपको नहीं पता कौन सी जेनेटिन, नहीं मालूम, और यह पता है कि इस्लाम में तीन में से दो हलाल जेलेटिन है सिर्फ एक हलाल, ये नहीं बताइए वाली जेलेटिन कौन सी ओके पर जू टू यूज है, या ये लिखा है कि बोन जेलेटिन तब भी बिल्कुल ठीक, तब तो बिल्कुल ही ठीक। ये लिखा है एनिमल जेलेटिन, एनिमल जेलेटिन में भी 50-50 होगी, या तो बोन है या ये कैसे गोश्त है, आगे मेंशन नहीं किया सिर्फ एनिमल जेलेटिन लिखा, 50-50 है इट्स ओके टू यूज। ओनली एक जेलेटिन हराम हुई कि जब यह मेंशन किया गया है यह सही से आपको मालूम हो गए कि इसके अंदर जानवर के गोश्त की बनी हुई जेलेटिन, फिर वो हराम हो जाएगी चाहे दवा हो और चाहे वो आम खाने पीने की चीज है। लेकिन अव्वल तो यह एक इंक्वायरी करना आप पर वाजिब है, और दूसरा यह है कि क्यों जानवर के गोश्त की जेलेटिन कम होती है बोन की ज्यादा होती है। तो जब भी आपको डाउट हो तो आप उसको हलाल समझ के इस्तेमाल कर लें। मैं 18-20 साल के बाद जाफरी आया हूं, इसलिए मैंने ये ऐलान पहले दिन नहीं किया, वरना नॉर्मली जब क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं तो मैं ये ऐलान कर देता हूं कि 2-3 मसले ऐसे हैं जो पब्लिक हर आने वाले से पूछती, यही एक सवाल होगा जेलेटिन का, गोश्त का, नजाजत का, हरत का, हर आने वाले से पूछेगी, बार बार सुनेगी, बार बार पूछेगी। हो सकता है उनकी नियत बहुत अच्छी हो सकता है ये हो कि कोई एक तो हलाल कर ही देगा जो भी नियत हो। तो मैं उमूमन कहता हूं ये सवाल जो बहुत ज्यादा कॉमन सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब मैं नहीं दूंगा या बिल्कुल आखिर में दूंगा, लेकिन चूंकि ये मेरा काफी सालों के बाद पहला सेशन है तो अभी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। आगे चलिए, दो सवाल हमारे पास आए हैं जो कि दोनों एक दूसरे से खासा रिलेटेड है कि व्हाई डू वी रीड कुरान इन अरबिक when we don't understand a word in Arabic. Number two, reading dua from dua book is reading dua from Allah but is not asking dua, it's reading. ठीक है, एक सवाल यह है कि कुरान अरबिक में पढ़ना क्यों जरूरी जबकि हम उसको नहीं समझ रहे। असल में कुरान नाम ही अरबिक का है, ये जो ट्रांसलेशन उर्दू में लिखा हुआ यह कुरान नहीं, ये कुरान नहीं। हमारे पास जो हदीसें सवाल बताती है वो कुरान पढ़ने की बताती है, और कुरान अरबी पढ़ने का नाम याद रखिएगा, इसीलिए बगैर उर्दू के कुरान छूना हराम, जो ट्रांसलेशन है आप उसको छू सकते हैं। हाँ, अल्लाह का नाम कहीं आ गया वो एक अलग मसला है कि अल्लाह का नाम बगैर उर्दू के नहीं छूएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहम के सूरे की पहली आए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, ये जो आपने नीचे लिखा है ये कुरान नहीं। तो इनका सवाल यह है कि हम कुरान अरबिक में क्यों पढ़ते हैं, असल बात यह है कि हम कुरान ही क्यों पढ़ते हैं। इसके दो जवाब होंगे, एक तो इसका सवाल जो रिवायतों में आया, मसलन रमजान में कुरान पढ़ने का सवाल, शबे कदर में कुरान पढ़ने का सवाल, वो आया कुरान पढ़ने का, कुरान पढ़ना तो कुरान तो है ही अरबिक, जो उर्दू है वो तो कुरान ही नहीं, और एक अलग से इस्लाम में इबादत है यानी यहां इस सवाल में दो अलग अलग चीजें मिक्सअप कर दी है। एक है कुरान समझना, कुरान समझना भी एक इबादत है, खुद कुरान पढ़ना भी एक इबादत। कुरान नाम है सिर्फ पढ़ ली, बाकी जिस जबान में भी जो लिखा वो कुरान समझना तो कह जाएगा। तो रिसाइट कुरान इज ऑल्सो इबादत, टू अंडरस्टैंड कुरान इज ऑल्सो एक इबादत। और यही वजह है कि सूरह जुमा में जो आप हर जुमे को पैगंबर की ड्यूटी है पढ़ते हैं, यत्लू अलैहिम आयातिही, वो खुदा की आयतें तिलावत करता है। वह जो अल्लमहुल किताब और किताब की तालीम देता है, तालीम अलग चीज है, समझाना बताना, और तिलावत अलग चीज है। तिलावत खाली रिसाइट कर देना, चाहे सामने वाला कुछ समझे या सामने वाला न समझे। तो एक बात ये याद रखिए कि अभी अगर आज तक अभी तक कुरान प्रिजर्व है, कुरान अंडरस्टैंड करना है इबादत, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कुरान मौजूद हो तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। कुरान अगर माशे से खत्म हो जाए तो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो कुरान समझना भी एक इबादत है, उसके लिए जरूरी है कि पहले कुरान को महफूज किया जाए। और अगर आज तक मुसलमानों में कुरान महफूज है तो सिर्फ इसलिए कि बगैर समझे लेकिन उसके रिसाइटेशन जरूर करते। अगर बाइबिल की तरह एक बार कुरान का उर्दू तर्जमा हो जाता तो इंडिया और पाकिस्तान के माशरे को फिर असल अरबी कुरान की इतनी जरूरत महसूस नहीं होती, और दो साल में नहीं, दस साल में नहीं, पचास साल में नहीं, 500 साल के अंदर वो अरबी कुरान उठ के रह जाता। अगर एक बार कुरान का लैटिन जबान में तर्जुमा हो जाता तो फिर वो अरबी टेक्स्ट 500 साल के बाद खुद ही खत्म होकर रह जाता। और फिर जो भी पढ़ते, जो ट्रांसलेटर ने समझा था, हम ट्रांसलेटर के कलाम को समझते, अल्लाह के कलाम को नहीं समझते। क्योंकि कुरान की हर आयत आप देखें, अगर आप 10 ट्रांसलेशन उठा रहे हैं उर्दू में या इंग्लिश, तो बहुत से कॉमन है, लेकिन जो बहुत ही अहम आयत है प्रैक्टिकल, उसके ट्रांसलेशन में इतना फर्क कि शिया भी इसी कुरान की उसी आयत से शिया बना है, सुन्नी भी उसी आयत को पढ़ के सुन्नी बना, वहाबी भी उसी आयत को पढ़ के वहाबी बना, और कादियानी भी उसी आयत को पढ़ के कादियानी बना। और इधर आयत हमारे सामने हो तो हम खुद देख सकते हैं कि खुदा क्या कह रहा है। अगर ट्रांसलेशन हमारे सामने हो तो सुन्नी का ट्रांसलेशन कुछ होगा, शिया का ट्रांसलेशन कुछ होगा। 500 साल के बाद जो हम उस पर मेहनत करेंगे, अंडरस्टैंड करने की, वो अल्लाह के अल्फाज को नहीं समझेंगे, हम ट्रांसलेटर के अल्फाज को समझेंगे। अगर ट्रांसलेटर ने गलती की है तो हम गलत चीज को समझ रहे हैं, अगर ट्रांसलेटर ने इंटेंशनली और पर्पजली गलत तर्जुमा किया है तो हम उसी चक्कर में फंस जाएंगे। ये बाइबल की स्टोरी, ये दुनिया की हर ऐसी किताब की स्टोरी। तो कुरान का ओरिजिनल टेक्स्ट बचाना भी बहुत है, वो बचेगा तो हर दौर में उसको समझना आसान होगा। फिर जमाना बदलने के साथ बहुत सारी आयतों का इंटरप्रिटेशन भी अलग होता चला जाता है। अगर हमारे सामने रब्बुल मशरिकैन वल मग़रिबैन वही ट्रांसलेशन हो जो 500 साल पहले किया गया, वो बिल्कुल अलग होती। और जब से ये फेथ ट्रेंडिंग शुरू हुई तब इस आयत का तर्जमा बिल्कुल अलग हो गया। तो अगर हम इस अरबी को न बचाते तो वो अंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती, और अरबी बचाने के लिए जरूरी समझ में आए, समझ में ना आए खाली उसको पढ़ा जाए। अब आइए इसको जरा समय लॉजिक की तरफ गए, वरना असल मसला यह है कि हम जो इबादत करते हैं सवाब के लिए करते हैं, रिवायतों में कुरान को समझने से ज्यादा कुरान की तिलावत का सवाब बताया गया। और तिलावत कहते हैं खुद अरबी अल्फाज को, उर्दू अल्फाज अल्लाह ने नाजिल नहीं, कुरान की जगह जो अल्लाह ने भेजा, जो अल्लाह की किताब, अल्लाह ने मसलन अल्हम्दुलिल्लाह भेजा है, सारी तारीफें अल्लाह की है या नहीं भेजा, वो जो तमाम रिवायतों में आया है वो असल अरबी वर्ड का है, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना। और इनका दूसरा सवाल ये था कि हम दुआ पढ़ते हैं, हमको पता ही नहीं क्या लिखा है। किसी ने बता दिया कि अगर बीमारी है तो दुआ मजनून पढ़ो, बीमार ठीक होता, पूरी दुआ मजनून पढ़ जाकर वो पता नहीं इसमें क्या मौजूद। या किसी ने कहा रोजी चाहिए तो खुला दुआ पढ़ो, दुआ हमने पढ़ ली, हमको पता ही नहीं हम अल्लाह से क्या मांगे, वो पढ़ते चले जा रहे। इसका भी वही जवाब है कि आपको उसकी डिटेल पता हो कि ना पता हो, आपने ये दुआएं मशरूम क्यों पढ़ी, बीमारी के लिए, आपका बीमार ठीक हो जाए। अब आपको पता हो कि ना पता हो तो खुला पेन किलर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है, और आप नियत करें कि मैं इसको पेन दूर करने के लिए खा रहा हूं तो नियत करें, जैसे ही आप खाएंगे उसके अपने असरात होंगे। तो दुआ के अपने असरात है, चाहे आपको उसका तर्जमा पता हो कि ना पता हो, आपको उसके मीनिंग पता हो कि ना पता हो, इतना आपको पता है कि रोजी की दुआ है, आप पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपको रोजी मिल जाएगी। बाकी इसकी तफसीर बहुत हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बहुत तेजी से टाइम गुजर रहा है। अब सवाल इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, सवाल यह कि ड्यूरिंग हज मैन एंड वीमेन आर टूगेदर, देन वाई फॉर नमाज वी हैव ए पोजिशन एट अवर मस्जिद। अच्छा, ये दो तीन अलग अलग चीजों को इन्होंने मिक्सअप कर दिया ड्यूरिंग हज। मैन एंड वीमेन आर टूगेदर, ये किस पोजिशन की आप बात करें, तवाब की या नमाज की? अगर तवाब की बात कर रही है तो मैं ये बता दूं कि तवाब के अंदर न सिर्फ ये कि एक मसला है, बल्कि सऊदी हुकूमत इस मसले को दोबारा वापिस भी लाना चाह रही। बहुत सारे मुसलमान मुश्तहदीन के पास हज में भी औरत और मर्द को अलग होना, जैसे हज और उमरे दोनों। अगर आप मदीने की मस्जिद में जाए और रसूल खुदा का रोजा, वहां पर मर्द अलग होते हैं, दोनों के टाइमिंग भी अलग है। और यह है कि जब मर्द वहां जाते हैं तो औरतों को नहीं जाने देते हैं, औरतों को। अब तक यानी तकरीबन 70 साल पहले हज में ये साल कि मर्द दिन को तवाफ करते थे, लेडीज रात के वक्त जाती थी। और पिछले 4-5 साल से इसका खासा काम हो रहा कि दोबारा ये सिस्टम वापिस लाया जाए। क्यों? बकौल कुछ मुश्तहदीन और उलमा कि हज में भी इस तरह से इजाजत नहीं और अलग अलग होना। लेकिन शायद वो तो हो गई यही बात कि आप सिर्फ 50-60 साल के हज को देखकर अगर ये समझे कि हमेशा से ऐसा हज होता रहा है तो ये गलत। पहले हज ऐसा नहीं था। जैसे जन्नतुल बकरी में आजकल हम लोग जाते हैं, आपको पता है पिछले 2 साल से बकरी में बड़ी सख्तियां हो गई और इतने ज्यादा वो लोग पाबंदी लगाते हैं, तो उसमें एक आर्गुमेंट वो हर साल होता है और वो ये कि वो एक जुमला कहते हैं जो बकरी में गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड उनके उलमा खड़े होते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो लोग इंडिया और पाकिस्तान के होते हैं तो उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, ज्यादा उर्दू ही में बात होती। वो क्या कहते हैं, वो एक जुमला ये कहते हैं कि ये खबरें जो तुम देख रहे हो 1400 साल के ऐसी खबरें, ये लोग कहां से तस्वुर लेकर आ गए कि इससे रोजे थे और लोग आया करते। प्रूफ करो, वीडियो लेकर आओ, ऐसे गवाह लेकर आओ, बस्तियों को नहीं मानते, सब झूठी तस्वीरें। इस वक्त जो हालत है कब्रों की उसको देखकर वो ये साबित करते हैं कि 1400 साल से यही हालत, क्योंकि हार्डली 80 साल हुए। उसी तरीके एक बहुत अजीब मसला है, यूनिटी 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 बहुत अच्छी चीज है। हरम के अंदर नमाज जमात यानी मक्के में एक होती है। अब वो कहते हैं कि देखिए आप लोग बाकी हल्के का अलग पढ़ते हैं या एक होती है, लेकिन वहां भी एक होती है 70 साल। बिफोर 70 ईयर्स खाने काबा के टाइम में 4 अलग अलग नमाज जमात होती है। हनफी अलग पढ़ता था, हम्बली अलग पढ़ता था, मालिकी अलग पढ़ता था, बाकायदा 4 मुसल्ले थे, 4ों के टाइमिंग भी अलग थे। ये खत्म तो फिर है शुरू जो किसी हद तक आपको करबला और नजफ में अपने रोजों में नजर आएगा। तो बाद लोगों 21 जहन में आती कि देखिए वहां मक्के के अंदर जाइए वहां इतनी यूनिटी है, करबला में जाइए वहां 4 नमाजें जमात हो। ये सब 50-60 साल की बात है। इसको इस पर सारे अहले सुन्नत उलमा इस तरीके से मुतफिक नहीं। तो जो चीज आपके सामने आ गई आप ये ना समझिए कि हमेशा से ऐसी। तो हज में भी पहले ये था कि औरतों के टाइम अलग, मर्दों के अलग, और काफी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उम्र में तो अक्सर इसमें कामयाब भी होते कि मर्दों को तबाह करते वक्त औरतों को अलग कर देते, बीच में वो एक लाइन बना देते हैं, रस्सी लगा देते हैं, या कुछ उनके आदमी खड़े हो जाते हैं, मर्द अलग और औरत अलग। एक बात तो ये हो। दूसरी बात ये हो कि ये मसला गालिबन आप तवाफ का लिख रही है, वरना हज के अंदर जो नमाज में तवाफ पड़ी जाती है उसमें इससे अभी भी यही मसला कि मर्द अलग और से अलग। और जो हरम के अंदर आम नमाजें होती है मगरिब इशा ज़ुहर असर, उसमें औरतें अलग मर्द अलग। तो खुद हज जो है हज के मसलों को आम जिंदगी में नहीं लाए, एक ही शब्द में लाने को तैयार। घर के मुझे तो कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन मुझे आपने समझ गया कि सिर्फ औरत और मर्द के साथ मिक्स गैदरिंग को ही ना लाइए, फिर हज किस को लाइए। कल से पाबंदी लगा दें कि हर मर्द हज वाला लिबास पहनेगा, एक लंगूटी और एक चादर और इसके अलावा कुछ नहीं पहनेगा। जब हज में वो पहनकर भी यहां से नहीं पहन रहा, ये पाबंदी लगा दे तो कोई बिल्डिंग में नहीं रहेगा। जब हज में वो खेमों में रहता है टेंट लगाकर, ये जो मकान आपके अंदर रह रहा है, हर आदमी जो है अपना मकान बेचेगा, जाके कारवान वारवान कारवान की जगह पहुंचता होगा टैंक में जाके। हज जो है ना वो कैसे है आदमी, उसके मसाइल को आम जिंदगी में लाना गलत है। जो ट्राई के मौके पे, जो तस्वीर के मौके पे चीजें होती वो आम जिंदगी में नहीं चलती। हज का लिबास हम यहां नहीं लाते, ये कहकर जब हज में ये लिबास है तो यहां क्यों नहीं। हज का एकोमोडेशन हम यहां नहीं लाते कि हज में जब ये है तो यहां क्यों नहीं। सिर्फ औरत और मर्द साथ साथ चले उसी में हमको हज याद आता। हज खुद एक किस्म का टेस्ट है, एक ट्राई है कि औरत तुम्हारे इतने गरीब है लेकिन ये तुम्हारा इम्तिहान है कि सिर्फ पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब है। चले हज की एक बात और कह दू ना, वो मान लीजिए आप, शायद आपने मानी भी होगी लेकिन अगर किसी के घर पे कह दी हज में शौहर पर उसकी बीवी हराम है, बीवी पे उसमें शौहर हराम, वो आप मान लीजिए कि नहीं ठीक है हम साथ साथ रहेंगे लेकिन शौहर के लिए बीवी हराम करेंगे, बीवी के लिए शौहर हराम करेंगे। तो हज की चीजों को यहां लाना इसका मतलब हज को समझ नहीं। आज टेम्परेरी नौइयत का एक इम्तिहान हो रहा है आदमी का और एक किस्म की ट्रेनिंग है। हज के सारे मसले अपनी आम जिंदगी में आप नहीं ला सकते, वहां पर किस्म का इम्तिहान है ना। जैसे रमजान खाना सामने रखा है नहीं खाओ, पानी सामने रखा है नहीं पियो, अब यह रोजाना ये नहीं चलेगा 11 महीनों। वहां पर औरत कितने गरीब है मगर कोई सेक्सुअल ख्याल लाने पर मर्द के दिल में औरत, औरत के दिल में खत्म हो गई। इसके बाद तो फिर आम हालत में वो सारे नेसेसरी प्रिकॉशन वाले मेजर लेना। इतने लंबे लंबे जवाब मैं दे रहा हूं लेकिन क्या करें, सवाल भी कुछ साइज के आ रहे हैं तो जिनके सवाल रह जाएंगे इंशाल्लाह अगर मैं जिंदा रहा तो लास्ट वीक लास्ट सैटरडे इसका जवाब आएगा। इफ वी वेंट टू बी स्टूडेंट ऑफ हजरत खिज़र व्हाट वी शुड डू। मैं नहीं समझा। अच्छा शायद ये वो हजरत मूसा के वाकये का जिक्र कर रहे हैं कि हजरत मूसा जो थे उनको हुक्म हुआ कि हजरत खिज़र के पास जाओ। सीरियस सवाल है कि जरा सा कुछ जोक का स्टाइल है या ये कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं। एक आदमी होना चाहिए जो जरा मुझे उर्दू समझ इंग्लिश समझा दे। कान उर्दू रखा ये हजरत खिज़र ही की बात की गई है। खिज़र और दूसरा कौन है? हजरत अलियास आलिम इलाही। दो तीन सवाल किसी बच्चे के हैं तो अच्छे सवाल किए आप करीब बैठिए। अच्छा नहीं मैं सही समझा था लेकिन ऐसा सवाल था कि मैं खुद शक में पड़ गया। हजरत खिज़र का स्टूडेंट बनना है तो हम क्या करें? गालिबन यह है कि सूरह कहफ में यह कहा गया है कि मूसा को भेजा गया कि खिज़र के स्टूडेंट बनो, तो इसलिए इनके दिल में यह सवाल पैदा हो रहा। तो इसका एक जवाब वो यह है कि कुरान में हजरत इब्राहिम की शरीयत की बहुत तारीफ की गई और शरीयत में मूसा का तस्किर आया, शरीयत में दाऊद का जिक्र आया। अब अगर कोई कहे कि देखिए कुरान में इतना इनको इनकी इंपॉर्टेंस और बताई गई और एम्फेसाइज किया गया, हम इस शरीयत पे अमल करना चाहते हैं, तो जवाब होगा कि रसूल खुदा की शरीयत के आने के बाद इब्राहिम और मूसा और ईसा सब की शरीयतें कैंसिल हो गई। अच्छी लगे तब भी, बुरी लगे तब भी। बुरी तो यकीनन लगेगी, मूसा की शरीयत में 50 नमाजें थी, हमारे यहां 5 नमाजें, तो 5 को छोड़ के कौन 50 की तरफ जाएगा, मुश्किल लगे। चाहे कोई मसला अच्छा भी लगे जैसे मार्टन रोड में, अच्छा मार्टन रोड से आपने हर एक में समझे, वहां मेरी बहुत तर्क बहस हो कि जी वो हजरत मूसा की किताब में लिखा जैसे ही औरत घर से बाहर निकले पकड़ो उसको गंजा करो और पूरे महल्ले में घुमाओ। मार्टन रोड की मस्जिद में बोर्ड लगा था कि सारी ऐसी औरतों को हम गंजा करके घुमाएंगे। काफी बहस हुई लेकिन क्या आपने नॉनसेंस लिख के लगाया? क्या ये तौरात मूसा के अंदर है? वो किताबें इरशादुल कुलूब की रिवायत खोल कर दिखा। हजरत मूसा की शरीयत में अगर ये है नहीं तो हजरत मूसा की शरीयत की जो चीज इस बच्चे को बहुत अच्छी लग रही थी यंगस्टर को, सारी गंदी औरतें घूमती नजर आए, तो वो भी आप अमल नहीं करेंगे। जो कुछ पूरे खुदा के आने के बाद पुरानी सारी शरीयतें कैसे हो, उसका अच्छा हुक्म हो उसका बुरा हुक्म। हजरत खिज़र का शागिर्द मूसा बने बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको जरूरत नहीं क्योंकि आप खिज़र खुद आले मोहम्मद के शागिर्द बनते हैं और आकर इनसे मसले पूछा करते हैं। जब खिज़र का उस्ताद हमको मिल रहा है तो हमें खिज़र के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको मौला का शागिर्द बनना है जिनके पास खिज़र आते, आपको इमाम हसन का शागिर्द बनना है जिसे मसला पूछने खजरे नबी आते थे, जब उनसे बेहतर उस्ताद मिल गया है तो फिर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, आप आले मोहम्मद की शागिर्दी अख्तियार करें। दूसरा सवाल यह है कि हु आर आलीन आले अल ऐन मेंशन इन कुरान, कुछ चक्कर है नहीं अब आर लिखा है इसका मतलब है कि कोई ग्रुप है या कोई इलाही, सॉरी जिनका सवाल इनका सवाल हमारी समझ में नहीं आ सका है इनसे मेरी सॉरी, मैं अदर तकले से कॉन्टेक्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आपको कुरान की आयत तो आले इन द प्लेस है
उनको
नहीं मालूम मुझे ऐसा लगा, अच्छा इनको ये लगा कि इसे आला इंडियन लगा कर फर्क कीजिए लिखने वाला का कोई और मकसद हो, तो ये वाला सवाल का जवाब तो जाहिर होगा, इसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि कुरान की आयत का नंबर लिख दें ताकि समझ में आ जाए। आला इंडियन जो है ना वो हूं नहीं आएगा, आला इंडियन किसी आदमी का नाम नहीं है, आला इंडियन किसी ह्यूमन बींग का नाम नहीं है, आला इंडियन कोई दाय करने वाली चीज नहीं, आला इंडियन एक स्टेटस जन्नत का हाइएस्ट स्टेटस जो है उसको कहते हैं आला इल्लियीन। अगर मुराद इनकी आला इल्लियीन से वो एक प्लेस है एक जगह है जन्नत में, तो वो एक जगह है कि जहां पर आदमी अपने नेक कामों के जरिए पहुंच सकता है। और तीसरा सवाल ये है, हम इस सवाल करने वाले का मजाक नहीं उड़ा रहे, मैं अपनी इंग्लिश का मजाक उड़ा रहा हूं। तीसरा सवाल यह है कि आदमी अलाउड टू कंप्लेन शिकवा और शुड बी पेशेंट, इसके अंदर जिस अंदाज के सवाल मेरी स्पेशलिटी है, मैं इधर उससे हटकर आ गए हैं, मेरे ज्यादातर मुझे मजा आता है कई मसलों के अंदर, तो ये सब बहुत मुख्तसर जवाब यह है कि शिकवा और पेशेंट ये दो अलग अलग या कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है कि आदमी शिकवा भी कर रहा हो साथ में वो पेशेंट भी, जैसे दुआए फिजा के आखिर में हम शिकवा कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तुइला का फतना नबी ये ना लगाए रखा वही खुद वही डायरेक्ट लफ्ज शिकवा रहा, तो शिकवे की दो सच में एक है कि जिसमें आप कुरान में कई जगह ये लफ्ज है हजरत याकूब का जुमला यूसुफ के बारे में मैं अपना शिकवा अल्लाह ही से करता हूं, अगर ये शिकवा और शिकायत किए कि अरे खुदा ये मेरे ऊपर प्रॉब्लम क्यों आया मेरी मदद कर यानी अल्लाह से हो तो बिल्कुल जाए, और अगर आपका शिकवा हो अगेंस्ट अल्लाह जैसे जमाने में नोह चल निकला था गलती हो जाती आदमी आए अल्लाह को जितना दारी में तूने ये क्यों कर दी, आए अल्लाह इतने सारे लोग के गुनाह करते उनके घर में अजाब नहीं आया हाथ हो तो मेरे घर पे आए, जिसमें अल्लाह पर आपका आपका कंप्लेन हो अल्लाह पर एक लाभ आपको ऑब्जेक्शन अल्लाह पर हो वो शिकवा जो है हराम, और जिसमें आप जो है वो अल्लाह से शिकवा करो कि अरे खुदा इतना मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही अल्लाह से आप कह रहे हैं तो बिल्कुल जाएज है इट्स नॉट अगेंस्ट पेशेंट, या आम आदमियों से भी बात करें लेकिन यही कहते हो कि पता नहीं अल्लाह की क्या मसला है तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है इससे मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूं, तो ये हराम नहीं। अब इसके बाद जो है एक दो मसले ऐसे आए हैं जिसके लिए मैं कौजी लेके बैठा हूं, इसलिए कि इन मसलों के साथ ये इंप्रेशन भी दिया जा रहा है कि जैसे ये मसले मैंने दो साल पहले बताए थे शायद गलत फलत बताए थे, आगज सिस्तानी की तौजी मेरे पास है जो मैं आमतौर पर किताब हाथ में नहीं लेता हूं, लेकिन जब आगज सिस्तानी ही के रेफरेंस से दो तीन ऐसे मसले बताए गए जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे। देखिए पहला मसला यह है कि फितरा बहुत अहम इबादत, फितरा बहुत अहम इबादत, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जान माल का तहफ्फुज़, आपको मालूम होगा कि जो नॉर्मल ज़कात है उसका नाम होता है ज़कात माल, क्योंकि वो आदमी के माल को प्रोटेक्ट करती है, और फितरे का नाम है ज़कातुल बदन, क्योंकि आदमी को फिजिकली मुसीबतों बलाओं और आफतों और बीमारियों से बचाती है, तो फितरे के अंदर अगर गलती हो जाए या खराबी हो जाए, जैसे आपने गलत की एक्सपायर्ड दवा पी ली या गलत कंपनी की दवा पी ली तो नुकसान आदमी की बॉडी को, उसके अलावा फितरा वो है जो रोजे का कबूल होना उसी पर डिपेंड करता है, अगर आपने फितरा गलत दे दिया तो वह आपके रोजे जो है ना वो सही तो हो जाएंगे कबूल नहीं होंगे। अब इस फितरे में बहुत सारे मसले हैं, इन दो मसले बहुत अहम बताइए। पहला सवाल ये पूछा गया कि किसी साहब ने ये मसला बताया कि अगर कोई आदमी दो अलग अलग किस्म की चीजें खाता हूं, यानी आटा भी उसके घर में खाया जा रहा है और चावल भी, तो वो आधा फितरा आटे का निकाले, आधा फितरा चावल का। नहीं, फितरा जो है ना वो पूरी मिलके एक चीज बनती, या निकलेगा तो पूरा चावल का निकलेगा, या निकलेगा तो पूरा आटे का निकलेगा। अगर आधा आधा करके दोनों को निकाला तो वो फितरा नहीं बना, वो फितरा नहीं कहलाएगा, वो फितरा आपका ऐसे भी मतदम वाजिब रहेगा और उस फितरे का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, कोई चैरिटी बने फितरे वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये मसला तमाम मराजियन यहां है, बल्कि पहले मसला पढ़ दू 2027, अगर आदमी आधा फितरा एक जिन्स का नहीं 228 इंसान आधा फितरा एक जिन्स का मतलब गेहूं का और आधा दूसरी जिन्स का मतलब जौ बतौर फितरा नहीं दे सकता, बल्कि अगर ये आधा आधा फितरा फितरे की कीमत की नियत से भी दे तो काफी नहीं, काफी नहीं का मतलब यह कि मुजरिम नहीं है वो नहीं मारेंगे। अब देखिए मसला क्या है कि फितरे का मतलब है 6.6 पाउंड, आपने 3.3 आटा दिया, 3.3 चावल दिया, अब ये इस तरह करके दे दिया तो फितरा ही नहीं, फितरा पूरा 6.6 एक चीज होनी चाहिए। पर मार्केट बल्कि अगर आप पैसे दिए, अब मसलन $10 आपको देना, आपने ये किया कि 3.3 गेहूं के पैसे निकाले, 3.3 चावल के, 12 दे दिया, $12 10 के 12 दिए, कुछ दिया नहीं है, लेकिन नियत ये कि ये गेहूं प्लस चावल के मिला के दे रहा हूं, डॉलर तो डॉलर है लेकिन आपकी नियत गलत है कि इसमें आधे गेहूं का मैंने हिसाब लगा, आधे चावल के, $12 भी नहीं चले, $10 चल जाएंगे पूरा अगर एक चीज के लिए। लेकिन अगर आपने खाली डॉलर का भी कैलकुलेशन करके डॉलर दिया, चलिए वो तो समझ में आता है कि आधा गेहूं दे रहे, आधा चावल दे रहे, ये भी चले, लेकिन डॉलर खाली गेहूं का देते 10 दे, अब आपने 12 दिया, आधा गेहूं का हिसाब लगा, आधे चावल का, तो $12 भी चैरिटी बन गया पिछला दिन। अरे एक बात बोलियो, दूसरी बात इस सवाल में ये पूछी गई है कि मैंने 2 साल पहले एक मसला बताया था कि फितरा जो है ना पूरा एक होता, और बहुत से मराठे कहते हैं फितरा तोड़ने की इजाजत नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि एक फितरा ले, फितरा एक गेहूं और आधा एक गरीब को दे और आधा दूसरे को, या $10 है, $5 एक को दे, 5 दूसरे। मुझे याद है मैंने ये मसला बताया था कि मौजूदा महाराजे इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन चूंकि मेजोरिटी ऑफ महाराजे इसको मना करते हैं, तो सेफ फाइट ये कि बाद में कोई अगर दूसरा मर्जी आ गए, जैसे मैंने इस साल भी जुमेरात के जुमे को मसला बताया, तो फितरा जो है कोई लाखों की रकम नहीं, $10, $20, $50, उसको शक में ना डालें, बिल्कुल सही तरीके से देख के जो सारे महाराजे के यहां सही है। तो उसमें किसी ने इतराज किया कि अव्वल तो ये मसला है सिस्तानी का नहीं, मैंने नहीं कहा था, नहीं इस दफा भी जो मैंने शुरू रमजान में एक मसला बताया था कहा था सिस्तानी का नहीं, लेकिन उन्होंने भी ये आगे लिखा कि आला सिस्तानी तो फरमाते हैं कि ये लकीर के फकीर लोग कौन सी नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज ही इस्लाम है नहीं, या तो आला सिस्तानी की तहरीर दिखा दिया है, उन्होंने ये किताब में उनका मसला मौजूद है, फरमाते हैं कि मसला नंबर 2026 एहतियात मुस्तहब है, यानी रिकमेंडेड ये कि एक फकीर को एक फितरे से कम न दिया जाए, उसका मतलब क्या हुआ कि वाजिब तो नहीं दे सकते लेकिन रिकमेंडेड ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की या कोई आर्मी की अपनी तरफ से बनाई नॉनसेंस बात, रिकमेंडेड आगर सिस्तानी भी आ दीजिए कि एक फितरे से कम ना दिया जाए, फितरा तोड़ा ना जाए। तो खैर ये तो सवाल किसी ने पूछा, इसमें मैं 2 छोटी बातें और बताऊं, और 40 मिनट का सेशन 55 मिनट हो चुका है, फिर भी 5 मिनट और करके घंटा पूरा करूंगा, 2 छोटी बातें और सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि मैंने जुमे की तकरीर में बीमार आदमी जो खाना पीना देता है उसके लिए एक बात कही कि माली वाजिबात के अंदर जितना सेफ साइड पर आप जा सकें, अगर ऐसी सेफ साइड पर जाना चाहें जिसमें आपको बड़ी सहमत हो रही, बहुत तकलीफ हो रही, तो जो ठीक है कि भाई जब एक चीज मेरे मर्जी के नजदीक वाजिब भी नहीं है तो मैं इतनी तकलीफ क्यों उठाऊं, लेकिन अगर कोई इतनी सहमत हो तकलीफ भी नहीं हो रही आपको, आसानी के साथ आप सेफ साइड पर जा सकते हैं माली वाजिबात, क्योंकि माली वाजिबात यह है कि मर्जा चेंज होने से माली वाजिबात के अंदर यह मसला आ सकता है जो पास वाले भी दोबारा से कर, यह मसला आ सकता है। तो अब अगर अगर सिपाही के यहां फितरे को तोड़ने की भी इजाजत है। तोड़ने का मतलब यह कि फितरा 10 डॉलर है, आप बगैर 10 डॉलर देने की किसी को 5-1 को दे 5-2 या 10 का मतलब 10 का मल्टीपल। आपके घर में 5 आदमी, आपने 10 डॉलर के हिसाब से 50 डॉलर फितरा निकाला, या तो किसी या गरीब को दे, या 25-25 ना करें, 30 और 20 कर ले। 20 का मतलब 2 फितरे इसको गए, 30 का मतलब 3 फितरे इसको गए। 25-25 का मतलब होगा 2.5-1 को मिला, 2.5-1 को मिला, तो 2 फितरे सही है, हाफ 12 फितर। अकॉर्डिंग टू आगे सीता की सही है मैंने कहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेजोरिटी ऑफ पराजय यह गलत। अब ये कोई इतना जहमत का मसला भी नहीं है कि आपको 30-1 को दे, 20-1 को दे, 25-25 के बदले अगर 30-20 कर दी तो आगे थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही। और आप ऐसा एहतियात वाला मसला इख्तियार कर रहे हैं कि सारे मराजे के नजदीक हो सही, फ्यूचर का भी आपका सेफ साइड हो गया कि अगर कोई मर्जेंट आ गया और वो पुराना मसला दे आया तब भी मुझे दोबारा पेमेंट। ये मैंने पहले भी कहा था, इस दफा भी लास्ट भी कहा और आज भी कहा। तो फितरे के अंदर $1 मिलियन आप नहीं दे रहे हैं, या आप $100,000 नहीं दे रहे हैं, $50-70, तो उसमें अगर आप इतनी एहतियात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात और सुन लीजिए, और वो यह है कि माली वाजिबात अगर किसानी नहीं, अगर कोई नहीं, लेकिन अगर कमेनी का बतमत और बहुत सर माली वाजिबात, अगर कोई आदमी दूसरे को गलत मसाला बताए और दूसरे आदमी ने उससे अमल करे, तो मसाला बताने वाले को पेमेंट अपनी जेब से कर रहा हूं। खुद के अंदर हमने किसी को गलत मसाला बता दिया, किसी को खुला चीज का खुंस नहीं रखा, उसने नहीं दिया कि खुंस हमको अपनी जेब से, या ये कि हमने कह दिया कि फुला चीज का खुंस वाजिब में देना पड़ेगा, पता चला खुंस वाजिब में उस बेचारे ने तो दे दिए $200, तो ये फिर हमको अपनी जेब से देना। हमने बता दिया फितरा इस तरीके से जाएगा, मतलब हमने कह दी, बताओ मिसाल हमने कह दी आधा फितरा चावल आधा फितरा गंदों में चल जाए, उसने दे दी, बाद में पता चला कोई मर्जी भी इजाजत नहीं देता, तो जो उसने $70 दिए वो हमको अपनी जेब से देना। या अगर किसानी या अगर कोई नहीं कहे, और मैं अगर किसानी और खुद दोनों की तकलीफ नहीं रखूं, मेरे के लिए तो मसला नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत मसले बता दूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं माली वाली बात में मसला बताना बहुत अहम बात, और फितरा तो बहुत ही मुश्किल बात होगी, बाद में पेमेंट भी हमको करना पड़ सकता, बेचारे के सारे रोजे हमारी वजह से रुके हुए और बेचारे के सारे बेनिफिट जो है वो हमारी वजह से जाए हुए। इसलिए फितरे के मसाइल एक दूसरे को बहुत एहतियात से बताया गया और बहुत ही सेफ साइड वाले बताए, ठीक। ये तो इसलिए मैंने कहा कि फितरे में गलती, $1 मिलियन में कोई गलती कर रहा हो तो मैं समझ में आता है, लेकिन $50 में कौन गलती करना चाहेगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मकान का खुमस वाजिब नहीं दे रहा कोई आदमी, तो जरा समझ में आता है कि मकान का खुमस इतना है कि पैसे की मोहब्बत, लेकिन एक सज्जदा वो नजर से लेकर आया, साल भर इस्तेमाल नहीं की, जिसका खुमस उसको 10 पैसे या 10 सेंट दे रहा, ये अगर रोक के बैठा है कि मैं नहीं दूंगा, तो ये माल की मोहब्बत में नहीं है, ये तो बेचारा जो है वो लाइनी में मारा जा रहा, वरना 10 सेंट 20 सेंट 50 सेंट तो अगर इतना खुमस हो तो लोग दे दें। कफन का खुमस, सिस्टेगा का खुमस, जायनमाज का खुमस, तस्वीर का खुमस, ये इतनी छोटी छोटी अमाउंट, इसके अंदर अगर लोग खुमस नहीं दे या गलत दे तो ज्यादा दे जाता, लाखों वाले ने अगर कोई खुमस ना दे तो जरा समझ में आती है बात। तो इसी तरह से फितरे को जो है ना बिल्कुल सेफ साइड पर पहुंचा दी, $40-50 है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है कि किसी गरीब का बहुत भला हो जाएगा, उसको आप अलग से खुमस दीजिए या अपनी तरफ से दीजिए, फितरा जितना सेफ साइड पे दे सकते हैं उसकी, जब हम उसके बेनिफिट देखते हैं तब भी, और जब उसकी इतनी नॉमिनल मिकदार है कि उससे के अंदर आप प्ले ना करें और उसमें कोई रिस्क ना लें। अब इसी से रिलेटेड एक आखिरी सवाल आता है, वो ये है कि फुलर फरमाते हैं कि क्या हम खुमस मनी पाकिस्तान के फ्लड के लिए दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो मुझसे कहा गया कि मैं किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताऊं। तो इसका जवाब यह है कि खुमस मनी सिवाय मर्जे की परमिशन के किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं दी जा सकती है, और किसी मुस्तहक को अपनी मर्जी से नहीं दे सकती। अलबत्ता खुमस मनी के दो हिस्से हों, सादात का पोर्शन अगर फ्लैट के अंदर कोई ऐसे सैयद हैं जो हुमत के क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं और आप ऐसे मुश्ताहिक की तकलीफ में हैं जो सैयद का पोर्शन आपको देने की इजाजत देते हैं, बहुत शॉर्ट कर दी, आगाज कोई और आगाज सिस्तानी कहते हैं सैयद का हिस्सा आपको तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इमाम का हिस्सा हमको देना, आगाज खामेनाई और आगाज खुमैनी फरमाते हैं सैयद का हिस्सा भी मुश्ताहिक को देना और इमाम का हिस्सा भी मुश्ताहिक को देना। तो अगर फ्लैट के अंदर कुछ सैयद इफेक्टेड हुए जो खुद के क्राइटेरिया पे पूरे होता है तो आगाज सिस्तानी वाला सादात का हिस्सा हमको दे सकता, इमाम का हिस्सा उस वक्त तक नहीं दे सकता जब तक ये होता है ये कंफर्म ना हो कि आगाज सिस्तानी की परमिशन उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी। और अगर खामेनाई की तकलीफ में अगर तो सैयद या इमाम दोनों का हिस्सा फ्लैट में नहीं दे सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन यह है कि अगर खामेनाई सैयद में इमाम का वन थर्ड फ्लैट में देने की इजाजत दे दी, सैयद में इमाम का वन थर्ड आपके अगर फर्जी $6,000 है तो $3,000 सैयद में इमाम बनेगा, तीन का वन थर्ड $1,000 आप दे सकते हैं। और अगर सिस्तानी की परमिशन अभी तक मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन में नहीं आई, अलबत्ता काफी हद तक मेरा गेस है कि वहां से भी इजाजत आ गई होगी। अब मुझे निकालिए एक तरफ मसला वही जाके बैठा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मर्जी की तरफ से इजाजत मिल गई और आपको ये कंफर्म हो जाए तभी आप उसको उम्स मनी देंगे, वरना उम्स मनी इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन विदाउट मर्जी परमिशन आप नहीं दे सकते। ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का मसला ये कि बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में काम कर रही, कुछ ऐसे हैं कि जो यहां से भी फंड्स ले रहे हैं, तो कॉलिंग वॉलिंग का सिलसिला भी चल रहा, जिस पर आपको भरोसा हो आप दीजिए, इसमें मेंबर से किसी एक का नाम लेना मुनासिब नहीं। एक सवाल यह है कि हमने ये सुना है कि फ्लोरिडा, बल्कि मुझसे कह रहे हैं कि आपने सुना होगा फ्लोरिडा एक पास्टर ने कुरान के जलाने का ऐलान किया है, हमारी इसमें क्या जिम्मेदारी? इस तमाम चीजों के अंदर जिस मुल्क में रहते हैं उसके कवानी के अंदर रहते रहे जिस तरह से कि आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड कर रहे, आगे किसी किस्म की फिजिकल एक्शन अभी तक महाराजे ने इस मुल्क के अंदर बल्कि किसी भी मुल्क में इजाजत नहीं दी। अब अगर पहले तो यह है कि जब इस किस्म की न्यूज आए तो पहला मरहला होता उसको कन्फर्म कर, बहुत सारी ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो बाद में पता चला कि वो गलत, इंटरनेट हरे के पास एक ईमेल बना के सर गलत खबरें फैलाती जाती है, जब कन्फर्म भी हो जाए तो फिर मौजूदा जमाने के हालात को देखते हो, ये जुमला है रिवायत का कि कभी कोई आदमी अच्छाई करने जाता है उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता, कि लॉगिंग करना है या अपने यहां के जो सैनिक का मेंबर है उससे कॉन्टेक्ट करना या ईमेल के जरिए प्रोटेस्ट करना, इसी हद तक आपको रहना, इससे ज्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं है। और क्योंकि 65 मिनट वाले में हमारा सेशन हो गया है इसलिए मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं ऐलान के साथ कि अभी इसमें मेरे पास बहुत सारे सवाल इस सेशन के भी हैं और इंशाल्लाह 2 वीक के बाद जब दूसरा सेशन होगा तो इस दौरान और सवाल किए जाएंगे, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सेशन में सबको कंप्लीट करूं और भेज दें, सवाल आना तो बहुत होगा तो मेरे भी या भैया की इंतजामिया की जो ख्वाहिश है उस पर भी हम अमल करें कि जो 2 वीकेंड बचते हैं दोनों वीकेंड में हम 40-40 मिनट का कोई इस्तेमाल सेशन रख लें, लेकिन थोड़ा सा ये स्टाइल मुझे सूट नहीं करेगा तो थोड़े सवाल फ्लोर से भी हम दिया करेंगे ताकि फ्लोर जाता रहे और अपने साथ मुझे भी जगाए रखे इस तरह की स्पीच को मैं अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो कैमरा रख के भी आराम से कर सकता हूं। आप जब यहां बैठे तो आपका भी जरा सा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो लास्ट सैटरडे तो यकीनी है इंशाल्लाह अगर मैं देता रहा और अब चांसेस हो गए सवाल की कसरत को देखकर और मेरे इस आखिरी ऐलान को सुनकर कि शायद हमको नेक्स्ट सैटरडे को भी चाहे 45 मिनट का सही एक सेशन रखना पड़ेगा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की तमाम जिंदगी जो इल्म को फैलाने की कोशिशें और जिहाद, उस जिहाद का वास्ता जो लोग फकत और फकत और फकत मसाइले दीन सीखने के लिए रात के हिस्से में इतनी देर यहां पे बैठे हुए हैं, इन मोमिनीन और मोमिनात की तमाम हाजतों को पूरा फरमा, इन्हें हर मुसीबत और परेशानी से महफूज फरमा, इन्हें और हर एक को तेरे दीन के हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस इबादत के तवस्सुस से इनको हर मुसीबत परेशानी से बचाते हुए इनके घरों, इनके घर वालों, इनकी औलादों तक इस सलामती को पहुंचा, और खुदा बंदा इन तमाम स्टेशन की हमको जरूरत ही न रहे, इसके लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमी इमाम जमाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।